गंगा की महिमा छात्रों के माँ बहुत अधिक मात्रा के माँ आती है कि जो हम लोग सुनते हैं उससे भी और बहुत ज्यादा महिमा है, और वास्तव के माँ उससे भी और ज्यादा हम लोग जो जानते उससे तो शास्त्रों में अधिक है और वास्तव में उससे भी और अधिक। इसी प्रकार से थी गीता की महिमा, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उससे भी और ज्यादा महिमा है। इसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा, इसी प्रकार से भगवान की महिमा, इसी प्रकार से महापुरुषों की महिमा जो शास्त्रों में देखी है पढ़ी है पूरा हम लोगों की जो जानकारी उसकी बहुत ज्यादा है उसमें शास्त्रों में, और वास्तव के महिमा उससे भी बहुत ज्यादा शास्त्रों में वो महिमा आ नहीं सकी। तो बोलो देखने में नहीं आती बात तो आप कहते हो भी ठीक है शास्त्रों में है ये तो हम नहीं मानेंगे, तो आप शास्त्र में जाकर दिखला दे बोले देखो तो माननी पड़ेगी। और आप तो कहते हो कि उसमें आई नहीं ऐसी महिमा और है, तो हम तो ये सुन रहे था कि शास्त्रों के बीच के वहां तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक तो भयानक एक रोचक और एक यथार्थ। बोलो हम तो सभी को यथार्थ मंत, तो बोले जो लोग कहते हैं कि रोचक और भयानक वो की गलत है ना, वो गलत नहीं है, रोचक जरूर है किंतु उसमें जो रुचि पैदा करने के लिए जो कहे गए हैं वो रुचि पैदा करने के लिए कहे गए इसलिए वह रोचक है, किंतु वह रुचि झूठी नहीं है। इस न्याय से तो आप झूठी कह सकते हो कि जितनी प्रशंसा होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं, इसीलिए तो आप कह सकते हो कि कर नहीं सके प्रशंसा हो, पर इस तरह की रोचक नहीं कि भाई बल्कि महिमा झूठी गाई हो, केवल कहने मात्र की रुचि हो ऐसी बात नहीं है। और भयानक तो जो भयानकता जो दिखलाई गई है उससे जो ज्यादा भयानकता है वो भयानक तो जरूर है, पर वह भयानकता झूठी नहीं दिखलाई गई है, भयानक बदल करें भयानकता कहे कि नरक कैसा है, नरक कैसा है, नरक में यह कष्ट है, नरक में यह कष्ट है, ये जो बताया गया है और नरक के कष्ट का दिग्दर्शन आपके सामने बहुत कम है, उससे तो बहुत ज्यादा मात्रा के मान नरक में कष्ट है वो तो दिखलाया नहीं गया। तो एक प्रकार से नरक का जो भय दिखलाया जाए उस वक्त उसका नाम भयानक है, किंतु भय थोड़ा ही दिखलाया है पर वास्तव में उसे वो ज्यादा भय। और हम जो कहते हैं वो शास्त्रों तो है ही, पर और शास्त्र में जो बात नहीं आई वो कहते हैं, मुझे ख्याल है कि थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि दुनिया के वहां जितने जीव हैं और फिर आपकी पारी के अनुसार मनुष्य का शरीर मिले तो वो साफ-साफ बताओ कि फिर आपको मनुष्य का शरीर कब होगा, उसी पारी के अनुसार हुए तो आपको कब मनुष्य का शरीर मिलेगा इसका थोड़ा हिसाब लगाओ। तो आपको यह मानना होगा कि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कोई हो, क्योंकि भगवान के तो न्याय है ना, सबको तो भगवान मौका देंगे, यानी कि हम लोगों को ही मौका दिया दूसरे में प्राणी जी का भटका ही नहीं हो। मनुष्य 3 अरब है उनमें सबका हिस्सा है, पात्र हो या पात्र हो एक बार मौका तो भगवान को देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका फिर कल्याण कैसे हो। तो इसमें थोड़ा ध्यान दो तो कितनी भयानकता भरी पड़ी है, युक्ति संगत है, कोई भी इस बात को काट नहीं सके कि तुम्हारी जो बात है जी की युक्ति विरुद्ध है। अरे न्याय की बात है फिर भगवान क्या हुए, भगवान तो दयालु है तो दया सप्री होनी चाहिए, भगवान न्याय करता है तो न्याय ऐसे होना चाहिए कि जो चीज संसार के मां मुक्ति देने वाली है मनुष्य का शरीर वो सबको ही मिलना चाहिए, कभी मिलो। एक राजा भी कोई अपराध करे तो उसको थोड़ा छूट दे रहे कि भाई तुम भविष्य में अपराध नहीं करना ये तुम्हारे को छूट दी जाती है, आगे के लिए तुम बॉन्ड भर दो कि हम प्रतिज्ञा करो कि कभी हम फिर पाप राज के विरुद्ध नहीं जाएं। तो राजा भी दया करे तो भगवान को तो दया करनी चाहिए और करते हैं। तभी तो हम लोग मनुष्य कब हो के करी करुणा नहीं हेतु। तो एक प्रकार से हम ख्याल करके देखें तो हमारे वचन जितने भयानक है इतने साफ से कह रहे कि यदि मनुष्य शरीर में कल्याण नहीं होया तो फिर क्या दशा होगी। तुलसीदास जी कहते हैं सो परत्र दुख पावे ही चिर धुनी धुनी पछिताय। ही कर्म ही ईश्वर की नीचा दो तो आगे जाकर के सिर धुंधुन के घोर पश्चाताप करेगा ईश्वर को और कर्म को और काल को झूठा दोष लगावेगा। तो जो कैसा है इससे जो उन्होंने बहुत भयदायक शब्द कहे हैं जो पापी है उनके लिए अस्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए अस्त्रियों के लिए जैसे पति प्रतिकूल जन्म जह जाई
पति प्रतिकूल
विधवा हो ये पाय तरुणाई कि जो अपने पति की बात नहीं मानती है पूर्व के जन्म के में जिसने अपने पति की बात नहीं मानी उनको ये दंड दिया गया कि दूसरे जन्म के बीच में वह छोटी अवस्था में विधवा हो जाएगी तरुणावस्था के बीच में। तो आजकल जितनी तरुणावस्था में विधवा हो रही है तुलसीदास जी के रामायण के वचनों के अनुसार ये उसका अर्थ लगाना चाहिए कि पूर्व जन्म के बीच में वे अपने पति के हुक्म को नहीं मान करके विरुद्ध चली माने केवल उसकी आज्ञा की अवहेलना का यह दंड है व्यभिचार का नहीं। व्यभिचार का तो इससे बड़ा भारी दंड है ये तो उनका हुक्म नहीं मानने का दंड है। व्यभिचार का कि पति वांचक पर पति रति ही करेगी
पति वांचक पर पति रति
अरे रोरव नारक कल्प सत परेगी पति बन सके पति ने ठकर के जो परपति से रमण करे है पति ने धोखो देकर के की वो रोरम नाम के नरक में सो कल्प वास करती है। ये देखो कितना भयानक है सो कल्प एक कल्प कितनी होती है कि सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग ये चार युग मिलकर के 43,20,000 वर्ष के होते हैं और इनको करो 1,000 गुना और उसको करो फिर 100 गुना एक कल्प शोक चोकड़ी सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग इनकी चारों की मिलकर एक चोकड़ी 43,20,000 वर्ष की हो है। और 43,20,000 वर्ष कि एक एक चोकड़ी ये महायुग है ऐसा 1,000 महायुग बीते जना एक सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मो विदु रात्रि युग सहसरा प्रांगते हुए रात्रि युग इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रात इतना बड़ा दिन और इतनी रात
है
तुलना करो बने उतना बड़ा दिन उतनी रात और देखो क्षण सुख लागी जन्म
सात कोटि जन समुझते सम को खोटी
तो वो सहवास का जो सुख है परपुरुष के साथ रमण करने का रति करने का रस भोगने का वो तो एक क्षण का है और उसका दंड है सौ करोड़ कल्प जन्म इतना सत कोटि सौ करोड़ जन्म उसको दंड भुगना पड़े एक व्यभिचार का यह फल। अब हिसाब लगाओ एक प्रकार से कितना है सो ध्यान सब लगा। इसी तरह से थी पुरुष ने वही बात पुरुषों ने अपने लिए माननी चाहिए स्त्रियों के लिए पुरुष तो भयानक जो वचन है रोचक जो वचन है इस शास्त्रों में है किंतु वह झूठा नहीं। तो इसी प्रकार से थी जो यह प्रशंसा करी गई कि सत्संग की महिमा गंगा की महिमा महात्माओं की महिमा ईश्वर की महिमा उसके नाम जप की महिमा सहस्राम के पाठ की महिमा जो बतलाई गई उससे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तो रोचक होकर के भी थोड़ी बताई तो बोले देखने वाली क्या सूर्य के प्रकाश की महिमा जिसके कान हुए उसको कितनी सुना दू पर वाणी के द्वारा कोई बतला नहीं सकता बिना आंख से देखे बिना। उल्लूक जो है उसको वो सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं। अब उल्लू को सुनाओ कि ऐसा प्रकाश वो कहता हमको तो दिखता ही नहीं तुम प्रकाश की महिमा गाते हमको तो दिखता ही नहीं। अब उल्लू को कितना ही एक प्रकाश से प्रकाश का महत्व बतलाओ पानी के द्वारा सूर्य के प्रकाश का महत्व कोई बतला ही नहीं सके जिसकी आंख नहीं वो तो आंख वाला ही समझे। तो यहां आंख क्या है कि श्रद्धा श्रद्धालु को वो दिखता है आंख नहीं अंधे को नहीं दिखता तो सबके मोतिया बिंद हो रही इसलिए एक प्रकार से उसको प्रकाश दिखता नहीं। तो मोतिया बिंद को इलाज हो तब जाकर प्रकाश कि तो उसमें दवाई डाले बहुत समय तक तब तो मोतिया बिंद कटे अरे के ऑपरेशन करा अर्जुनों के पास में जाकर के मोतियाबिंद की दवाई क्या है बोले श्रद्धा मोतियाबिंद अश्रद्धा है तो अश्रद्धा ने हटावे तो कैसे पुरुषों के पास जाओ कि जिन पुरुषों के मन श्रद्धा है श्रद्धालु जो पुरुष है खुद जो श्रद्धालु है उसमें हम श्रद्धा करें और उसका फिर सेवन करें तब वो मोतियाबिंद कैसे तो हमको फिर दिखने लगे। तो गंगा जी की महिमा गाई कि गंगा गंगा उच्चारण करने से पाप नाश हो जा और दर्शन करने से तो फिर पाप रहते ही नहीं और स्नान और पानी की तो गई खुल गए कहते हम तो महीनों तक स्नान पान करते हैं वह जगह वैसे ही रहते हैं। बोले तुम्हारे तुम्हारी ये जो मानता है यह मानता ही नास्तिकता की मानता तो एक प्रकार से तुम्हारी नास्तिकता तुम्हारे को उससे वंचित कर रखे उसे क्या उपाय गंगा की तो महिमा जैसी है वैसी है और तुम उसे लाभ नहीं उठा सके तो अपने नास्तिकता के कारण से नहीं उठा सके उस नास्तिक भाव को दूर करो फिर देखो आपने कितना लाभ मिले। और यही बात नाम के विषय में नाम का जो जप है उसकी आपकी बात तो दूर रही नाम पापों के नाश के वास्ते नाम का जप करना एक नाम की इज्जत घटाना है क्योंकि पापों का तो नाश नाम के जप के आभास से हो जाता संसार का जो अंधकार का जो नाश है वो तो सूर्य भगवान के उदय पहले ही उसकी जो रोशनी आती है 5 मिनट पहला वो आभास है उससे दूर हो जाओ और सूर्य के बाद तो फिर बात ही क्या है। सूर्य से हम ये प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हम आपसे ये चाहते हैं कि आपका दर्शन हुए और हमारे देश का जो अंधकार है ये दूर हो जाए। तुम कहो कि मूर्ख है, एक ही बहुत है, आप हमारे देश में आओ, अंधकार के नाश के वास्ते अलग प्रार्थना की जरूरत नहीं, अंधकार का नाश तो आप ही हो जाएगा, सूर्य भगवान ही आओगे। तो जब भगवान प्रकट हो गए तो पाप थोड़ा रहेगा, भगवान के दर्शन से ही पापों का नाश हो जाएगा, क्योंकि जब उसके नाम के जब से ही हो जाता है, जब से नहीं उसकी आभास से हो जाता है, तब तो भगवान के दर्शन देने पर कभी पाप रहते हैं। बोले देखा भी भगवान श्री कृष्ण जी थे, भूतों को दर्शन होते थे, वे पापी बने ही रहे, तो भाई भगवान को भगवान थोड़ा ही मानते थे, उनकी श्रद्धा थोड़ी सी भगवान की, वहां श्रद्धा की तो आग लगा रखी है। तो बोले स्वाभाविक भी ऐसी बनाने है, बोले स्वाभाविक भी है, किंतु कलयुग आ गया ना, इस कलयुग के बीच के वहां जो है श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती। हमारे इतिहास पुराणों में कथा आती है कि जब कलयुग ने यहाँ पैर रखा, उस वक्त के वीर के माँ राजा पृष्ठ तलवार लेकर उसको मारने की चेष्टा करी, बैल के रूप के माँ धर्म था, उसको कसाई के रूप में वीर के माँ कलयुग आकर उसका पैर तोड़ने लगा, तीन पैर तोड़ दिया, फिर चौथा तोड़ने लगा कि वो ले तलवार खड़ा हो। जब वो शरण आ गया, तुम कौन? बोले मैं कलयुग। और बोले बैल कौन? इसको तुम निर्दयी ऐसा तोड़ रहे हो, हमारे देखते देखते इसके पैर तोड़ रहे हो, इसे तुम्हारा क्या लाभ? बोले ये बैल है धर्म है, धर्म की तुमने तीन टांग तोड़ दी, हम तुम्हारे को बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। महाराज आपका जब तक राज रहेगा तब तक एक प्रकार से मैं अब मेरा जो प्रभाव है उसको नहीं फैलाऊंगा। नहीं तो बोले आज के 5000 वर्ष तक और आपको मैं छुट्टी दूं, कभी तो मैंने जगह देवगाई निवास की, और वर्तमान के मां मैंने स्थान तो बतलाओ मैं कहां बसूं, तो उनको सब स्थान बतलाया कि मदरा की भट्टी हो वहां जाकर तुम बसो, मद पियो उसमें प्रवेश कर जाओ, और जहां जुआ हो वहां जाकर के तुम डेरा लगाओ, जुआ खेलते हो प्रवेश हो, और जहां सुवर्ण का जो आपने आभूषण पहले उसके में जाकर प्रवेश करो, और रज स्वालाश्री में प्रवेश कर जाओ, उसे कोई भोग करे तो उसमें तुम सो प्रवेश कर जाओ। इस प्रकार से उनको ये स्थान समझाया, इन स्थानों के बीच में तुम जाओ और हो, 5000 वर्ष के बाद में फिर तुम रूप धारण कर लेना अपना। तो ये 1956 का साल जो बीता तब 5000 वर्ष लग गए थे, तो अब एक प्रकार से कलयुग आपके पूरे रूप में आ रहे हैं, तो कुछ नहीं आ रहे हो, बढ़ रहे हैं। छप्पन में 56 वर्ष बीत
गया,
भगवती गंगा जो है इसके लिए एक प्रकार से कह दिया था कि 5000 वर्ष बीतने के बाद में समझा गंगा जी का जो महात्म बतलाया गया है वो प्रभाव आपने नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो अब गंगा जी का भी प्रभाव आप देखो, 56 के साल के पहले की बात भी हमारे को याद है, हमने खुद देखा ही कि गंगा जी के ऊपर कितनी श्रद्धा थी, अभी हम देखते हैं तो हमको दिन रात का फर्क लगता है। 56 के साल के बाद भी 58-60 दादी के साल भी जो बीती तब तक भी एक साथ उसकी श्रद्धा दूर नहीं हुई थी, और अब भी है किंतु वो नहीं। हम चूरू में थे उस वक्त में, तो बहुत से आदमी गंगा जी जाया करते, तो वहां से जय गंगा माई की, जय गंगा माई की वहां से ही निकलते ही वहां से जय गंगा माई की घोष करते जाते, और पाछे ऊंचे तब तक गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, ये बात चलती।
मेरे नाना जी के साथ में मेरी माँ भी गई थी तो मैं भी साथ में था, बहुत छोटा था, बच्चा था। तो माँ कहती कि तुम जब से बोलता था तुम बोलता कि जय, तो बच्चे से क्या याद है। और माँ के साथ गए तो उस वक्त के बीच के मां जो गंगा जी जाकर लौट कर लोग वापस आते तो वे खीर कंठी ये सब लाते वहां से, माने धान का लावा और छोटा छोटा मखाना और कंठी वहां का प्रसाद बोल के, वो एक प्रकार से थी। और आके के गांव के किनारे ठहर जाते, किसी आदमी को भेज देते कि भाई गंगा जी गए थे वो आ गए। तो शहर का लोग बड़े उत्साह के साथ के बीच में उनके घर के लोग मोहल्ले के लोग स्त्री और पुरुष जैसे उनका दर्शन करके छू छू करके कहते हेलो गंगा जी का स्नान कर लिया, स्नान तो वे करके आए। और छूने वाले एक और किसी अपने को किरदार मानते कि हम से तो जितनी दूर तो नहीं गए गंगा स्नान कर, जो गंगा स्नान करके आए उनका एक दर्शन कर दिया स्पर्श कर। ये बात थी उनमें गंगा स्नान करके आते उनमें इतनी श्रद्धा। और वह कंठी मतलब परिमिति लाते नहीं, तरफ बोझ को लिया उसमें रेल तो थी नहीं, छुपाती गंठी बिलती कराते लेवर जो की बिलती कर दिया ज्यादा लेवर को ढोल के उठ नहीं लावे तो समझो कि थोड़ा थोड़ा दाना तो खील का थोड़ा मखाना प्रसाद के जो दिया जाता है एक एक कंठी। तो एक प्रकार से समझो कि शिशु के दाना मान उनका होता वो आपने दाना ऐसी एक कंठी के मां एक थोड़े में कोई 20-30 कंठी उठे वो ज्यादा हो वह एक एक कंठी बस गले के बांध बांध कर लोग खुश होता है कि गंगा जी को प्रसन्न आज वो प्रसन्नता स्नान करने हमें को नहीं उनको जो लाभ मिल रहा चाहे वो तो उचित या न्याय या इनको न्याय हो या कम हो रहा वो न्याय है। तो भगवान के यहाँ तो न्याय है, श्रद्धा प्रधान चीज है, श्रद्धा हुए उसको लाभ नहीं हुए तो आप होंगे। हम लोग उस वक्त के वहां 50 वर्ष के परमा जब आते गंगा जल पीते थे तो ये हम भावना होती है हमारी कि गंगा जल पी रहे हैं तो हमारे यहां से लेकर यहां तक के सब पाप साफ हो रहे हैं। और हम लोगों को अनुभव होता है कि मानो पापों का नाश हो जाए पीने वक्त, तो वो याद ही कौन दिलाता है, भावना ही कहें कि यार कौन ऐसा देखता है। आजकल तो हम लोगों का अन्न दूषित हो गया, उस समय के बीच के मां इतना दूषित अन्न नहीं था, हम लोगों के घरों का अन्न पवित्र था। हमारे ननिहाल का जो अन्न है चीज है उसके मां और विशेषता थी, ये विशेषता हमने खुद देखी और हमारे से भी अधिक हमारी मां ने देखी, उसे सुनी भी और हमने खुद देखी। जब दूसरे के धन को धोखे समान समझते, आज 60 वर्ष हुए हुए हैं, 60 नहीं तो 50 क्या कलकत्ते के वहां फार्म था आसाराम बाजू जी के नाम से, जो हमारी इतनी उम्र वाले आदमी इस बात को जानते भी होंगे, तो वो आसामी फैल हो गई, वो एक प्रकार से सब ईशानी के वहां सब बसना भेज दिया गया और सब ईशानी वालों को जो कुछ उससे मिल दिया वह त्यागना छाना वह सुखाना का निर्णय हो गया। फिर हमारे खुद के मामा जी थे नारमल जी, वे कलकत्ते गई और वे उनके पिताजी और 6 भाई थे, सभी के लड़के एक प्रकार से उस वक्त में करीब करीब मौजूद थे और सभी उस वक्त के वहां पैसा उनके पास में खत्म हो गया था और कुछ पैसा हमारे मामा जी के पास में थे। उन्होंने जाकर के वो कोशिश करके
ईशानी से सारे प्रश्न उठाए और अपना जो जेवर ये सब ले जा करके के और कुछ रुपया था वो ले जा करके मांगने वाले आदमियों को उसमें शामिल करके सबको रुपये दिए और जो रुपया घट गया उसकी हुंडी लिखती दसवीं हुंडी जब चाहो तब एक प्रकार से लेस को पुर्जे की जू हमारे पहुंच भी आप ले सको कोई किसी को म्याजी किसी को ये और जो बहुत निकटवर्ती थे वे लोग भी उनसे जाकर चढ़ गए कि हमारा रुपया दे हमारा रुपया तो देना ही होगा बोले सबका दिया जाएगा हमारा निकटवर्ती उनको थोड़ा ठहर कर देना और दूसरे आदमी को पहला दे देना पर आखिर के बीच के वहां सबका रुपया ब्याज हुंडी का भुगतान उन्होंने समझो कमाते गए देते गए ये नहीं कि भाई लोगों का जो 2 लाख रुपया देना है तो 2 लाख का हमारे पास में 2 लाख हो जाएगा तो देंगे नहीं अपने पास में 20,000 रहा तो 20,000 बांट दो सैचे साथ फिर 20,000 बांट दो सैचे साथ इस प्रकार से लोगों के रुपये दिए कोई एक निष्ठ प्रति आदमी था उसने कहा कि हमारा रुपया तो देना ही होगा हमारी जो माँ है हमारा जो पिता है उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे तो बोला भी के हमारी माँ का नाम शोभाई था बोले शोभाई का रुपया जिम्मा है उसका रुपया लेकर इनका पूर्ति करो ऐसे पूर्ति बोला करते गए आंकड़ी के बीच के माँ पाई पाई सबकी और देश से गए तो उन्होंने ये मन के माँ संकल्प लिया कि सबका रुपया मेरे रेडी सब तो जाएगा 20,000 रुपया मेरे पास और अधिक हो जाएगा तब मैं देश आऊंगा नहीं आऊंगे आऊंगा ही नहीं ये प्रतिज्ञा के बीच आए भी नहीं इस बात को हमारे पिता जानते थे मैं जानता था मेरा भाई हरकृष्ण जानता है मेरी माँ जानती थी हम लोग सब जानते ये उनकी प्रतिज्ञा और उनकी प्रतिज्ञा थी जैसे सिद्ध हुई सबके रुपये दी ये तो मैं बात की बात कही आपको इसके पहले की तो और विशेष बात है जबकि ये उनका दिवाड़ा नहीं निकला था उस वक्त के बीच के हमारे देश रहते थे मैं भी उनके रतन मेरे नाना के यहाँ ही ज्यादा रहता था हमारे पिताजी और हमारे दादाजी और तो छोटी अवस्था में मर गए थे हमारे पिताजी की उम्र भी बहुत छोटी थी तो हमारी जो नानी है हमारा नाना है उन लोगों ने सहायता दी एक प्रकार से और हम सब भाई लड़के लड़की वहाँ नाना के यहाँ रहे उस वक्त में हमारी सब बात देखी हुई है हमारी जो मामी है एक दिन रात में उनके घर में चोर आए और चोर के जैसे एक प्रकार से समझो कि घर भी भीतरी के भी मदद थे तो दीवार ज्यादा ऊंची नहीं उसके ऊपर लांग करके आ जाओ कोई बनाए अपने जो चार द्वारी है सर्गासन की है तो बहुत ऊंची है वो इससे कितनी ऊंची थी तो उसे लांग कर कोई आ जाओ तो चोर आए रात आकर के इस वक्त इनका पास वहां बहुत रुपया था तो वे लोगों का जो गिरवे रखते थे गहना गिरवे रखते थे और अपना घर का भी गहना और रुपया से गिनवे रखते थे और एक कोई तिजोरी नहीं थी संदूक से वहां रखते थे तो काठ की संदूक ऊपर लोह से मंडी हुई ऐसे जैसे बिहानी कहानी रखती दिल्ली कहानी वो संदूक हाँ भीतर में कपड़े लगे हुए तो वो रात्रि में चोरा के संदूक खोल करके जितना गहना उसको निकाल दिया 5-4 आदमी ले जाने की तैयारी है और उसके जो कमरे में जो चोर है उसके आगे तिवारी उस तिवारी में हमारी मामी सुती हुई है उसको हाथ पकड़ के मैंने किसी ने उठाया